مرکز کی انجیل 16 باب آیت نمبر 1 سے. جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملیں. وہ ہفتہ کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. جب انہوں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ پتھر لڑکا ہوا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بڑا تھا. اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک جوان کو سفید جامہ پہنے ہوئے دینی طرف بیٹھے دیکھا اور نہایت حیران ہوئی. اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو, تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو, جو جی اٹھا ہے وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا, لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا, تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا. آئیے دعا کریں. اپنے سروں کو ایک بار پھر ہم جھکائیں اور خدا کے کلام کے لیے ہم دعا کریں. سب اپنے اپنے لیے کلام مانگیں. ہللویہ ہللویہ. پریز گاڈ پریز گاڈ پریز گاڈ. آج ہم سب اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ خداوند یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کے دن کو ہم منا سکیں. یہی عید قیامت المسیح ہے, اور مسیحت میں اگر کوئی چیز بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو وہ یسوع مسیح کی موت, اس کا دفن ہونا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے. یہی خوشخبری ہے, یہی گاسپل ہے. تو ہم نے گڈ فرائیڈے والے دن مسیح کے مصلوب ہونے کو منایا ہے, اور آج یسوع کے زندہ ہونے کے دن کو ہم منا رہے ہیں. پرابھو یسوع کیسے زندہ ہوا یہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں, کیسے اس کو مصلوب کیا گیا. سبت شروع ہونے کو تھا, بغیر تیاری کے انہوں نے اس کو دفن کیا, اور اس طرح سے اس باڈی کو وہ خوشبودار چیزیں نہ لگا سکے اور وہ آئنٹمنٹ نہ کر سکے جیسے ان کا دستور تھا. سو اگلا دن سبت کا تھا, بائبل کے اندر لکھا ہے حکم کے مطابق سبت کے دن تو انہوں نے آرام کیا, لیکن ان عورتوں نے جا کر وہ جگہ ضرور دیکھ لی تھی جہاں پر اس کو دفن کیا گیا. اور جب سبت کا دن گزر گیا تو صبح سویرے ہی ابھی اندھیرا ہی تھا کہ وہ اٹھی تاکہ جا کر اپنے مالک اپنے خداوند کو تیاری کے ساتھ دفن کر سکیں. اور یہی سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں قبر پر گئیں تو ان کی توقع کے برخلاف خداوند یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا. وہ تو گھر سے ارادہ کر کے گئی تھی کہ ہم جاتی ہیں اور جا کر اس کے بدن کو تیاری کے ساتھ وہ چیزیں لگا کر اس کو دفن کرتی ہیں جیسا دستور تھا. وہ تو دفن کی تیاری کے لیے گئی ہیں, لیکن جب آگے گئی تو خداوند یسوع مردوں میں سے زندہ ہو چکا تھا. آج میں اس واقعہ کو آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا, یہ واقعہ آپ کو آلریڈی پتا ہے, لیکن اس پورے واقعہ میں ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب یہ عورتیں جا رہی تھی تیاری کر لی, وہ مسالے وہ خوشبودار چیزیں جو اس ایریا کے دستور کے مطابق ڈیڈ باڈی پر لگاتے تھے وہ چیزیں لے لی, چل پڑی. رستے میں انہوں نے ایک بات کہی, آپس میں گفتگو کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپس میں, وہ کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. ہم نے تیاری تو کر لی ہے, ہم جا بھی رہی ہیں, لیکن ہمارے اور خداوند کے درمیان اس باڈی کے درمیان ایک رکاوٹ ہے. اب وہ رکاوٹ پتھر ہے, کیونکہ اس زمانے میں قبریں ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل پاکستان میں ہیں. وہاں پر وہ پہاڑی علاقہ تھا, پہاڑ میں کوئی بھی چٹان کے اندر جو غار بنائی جاتے وہی بطور قبر استعمال کی جاتی تھی, اور پھر اس کے منہ کے اوپر बहुत बड़ा पत्थर होता जैसे लड़का दिया जाता। और मैंने इसके बारे में स्टडी करके देखा है कि कब्र के मुंह के आगे वो थोड़ी सी जगह ऐसे खोद देते और पत्थर को एक साइड पर से जब लड़काते तो वो उसके अंदर फिट हो जाता, और फिर उसको वहां से हटाना आसान काम नहीं होता था। काफी आदमी मिलकर काफी जोर लगाकर उस पत्थर को उसकी जगह से हटाया करते थे। पत्थर वैसे भी हटाना आसान काम नहीं होता, काफी मुश्किल काम होता है। अब इन औरतों के लिए सबसे बड़ा मसला उनकी सोच उस जगह पर अड़ी हुई है कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन लुढ़काएगा, ये क्वेश्चन है। लेकिन अब जरा गौर करें, इससे पहले तो ये कब्र पर पहुंचती पत्थर ऑलरेडी वहां से हट चुका था। क्या ये मेरी और आपकी तस्वीर नहीं है कि जिंदगी के अंदर कई दफा हम भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ये खुदावंद के लिए मेरी अकीदत है, लेकिन ये चीज है जो मैं करना चाहता हूं लेकिन उसके रास्ते में हायल है, रुकावट है। मेरे लिए ये पत्थर कौन हटाएगा, कैसे ये रुकावट दूर होगी। लेकिन याद रखें, अगर खुदावंद उनकी जरूरत को जानते हुए उनके वहां पर पहुंचने से पहले ही पत्थर को हटा सकता है तो हमारा मेरा खुदा आपके रास्ते के हर पत्थर को भी हटाने की कुदरत रखता है, वो कर सकता है। मुझे नहीं पता आज आपके सामने कौन सी चीज है जिसको आप बड़ा पत्थर समझ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम कैसे दूर होगी, ये बड़ी बीमारी है, ये बड़ी मुश्किल है, ये बड़ी आजमाइश है जिसमें मैं गिर गया हूँ, कैसे इसमें से मैं निकल सकूंगा, मेरे लिए ये पत्थर कैसे हटेगा, कौन लड़काएगा। और इस सवाल का जवाब ये है, कौन लड़काएगा ये पत्थर, मेरा खुदा कर सकता है, क्योंकि जो इंसान के बस से बाहर बात हो वो खुदा कर सकता है। एक दिन खुदावंद यीशु ने कहा कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्योंकि एक आदमी यीशु के पास आया और दौड़ता हुआ आया, यीशु का सजदा किया, उसे कहा अरे खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा जो कुछ तेरे पास है जाकर गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और बाइबल के अंदर लिखा वो आदमी अफसुर्दा होकर वहां से चला गया। और जब वो चला गया तो यीशु ने कहा दौलतमंद का, बल्कि शागिर्दों ने कहा दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है, क्वेश्चन था। फिर कौन नजात पा सकता है, अगर ऐसा ही मुश्किल काम है तो कौन नजात पा सकता है। यीशु ने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। कौन सा वो पत्थर है, कौन सी वो रुकावट है, कौन सा वो प्रॉब्लम है जो हमारे सामने आज पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। आज मैं मैसेज आपको यही देना चाहता हूं कि मेरा खुदा हर पत्थर को हटाने की कुदरत रखता है, वो कर सकता है, वो हटा सकता है। कोई इंसान शायद आपकी मदद ना कर सकता हो लेकिन मेरा खुदा आपके लिए पत्थर हटाने की कुदरत रखता है। और ये सवाल यहां पर सिर्फ इन औरतों के दिल में नहीं था, बाइबल मुकद्दस में और भी कई जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा गया, यही सवाल था। और ये सारी ऐसी सिचुएशन है, कैसे होगा, कैसे होगा। अब याद रखें हिजकिएल नबी को, हिजकिएल 37वें बाब में यह वाक्य लिखा हुआ है, खुदावंद रूह में एक बड़ी वादी ने ले गया और वो वादी हड्डियों से कोर थी और वो हड्डियां नहाय सूखी हुई थी और बकसरत थी, इसका मतलब बड़ी तादाद ज्यादा थी और सूखी हुई थी। और खुदा ने हिजकिएल को उन हड्डियों के बीच में ऐसे फहराया और उसने सवाल पूछा, उसने कहा आदम साहब क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है, कैसे नामों का नहीं लगता, हम तो यहां मुर्दों के जिंदा होने की बात कर रहे हैं, ये आदमी तो मरे हुए पता नहीं कितने सौ साल हो गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हैं, गोश्त या नसें या ऐसी कोई चीज वहां नजर नहीं आ रही है। और सवाल जब किया जाए क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं, इसलिए जानता था कि खुदा कर सकता है, हो सकता है खुदावन तू ही जानता है, खुदावन तू ही जानता है। और खुदा ने वहां पर साबित किया, उसने कहा हिजकिय्याह को इन हड्डियों पर नबूवत कर, जब उसने नबूवत की वो हड्डियां हड्डियों के साथ मिलना शुरू हो गई, फिर उन पर गोश्त आ गया, फिर उस पर ये जिल्द स्किन चमड़े की कोशिश हो गई, और जहां पहले हड्डियों के ढांचे थे वहां पर अब लाशों की सूरत में लोग पड़े हुए हैं। फिर खुदा ने कहा ए आदमजाद हवा से कह, क्या दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के ये जिंदा हो जाए, और खुदा का रूह आया, और जब खुदा उनका रूह आया तो वो हड्डियां जिंदा हो गई और वो सब अपने पांव पर खड़े हो गए, और जहां पहले हड्डियां ही हड्डियां से नजर आ रही थी अब हिजकिय्याह देख रहा है एक निहायत बड़ा लश्कर है। कैसे ये हो गया? खुदा के कलाम की पावर से और खुदा के रूह की पावर से कैसे ये काम होगा? क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हो सकती हैं, खुदा कर सकता है, खुदा के कलाम में पावर है और खुदा के रूह में पावर है। यीशु का मुर्दों में से जिंदा होना बड़ा मुश्किल काम था। पहले तो अपनी कोशिश कर रहा था कि यीशु मसलूब ही ना हो, लेकिन लाइलमी में ये काम हो गया। बाइबल के अंदर लिखा अगर वो जानते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब ना करते। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि हम जिसको समझ रहे हैं कि हम इसको मार डालें तो मसला हल हो जाएगा, उन्हें यह आइडिया नहीं था कि इसके मरने के सबब से तो पूरी दुनिया की निजात का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए कलाम में लिखा अगर वो जानते, इस जहान के सरदार जानते तो जलाल के खुदावंद को मसलूब न करते। उन्होंने तो अपनी तरफ से किस्सा मुकाया कि ये मौजे कर रहा है, ये खुदा की कुदरत को बयान कर रहा है, तो इसको मार डालें तो काम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो जानते नहीं थे। लेकिन अब जब मर गया तो बड़े खुश होंगे, काम खत्म हो गया, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा देर बरकरार नहीं रही, क्योंकि जब खुदा काम करने पर आता है तो अबलीस उसको रोक नहीं सकता है। उन्होंने कोशिश की कि ये जिंदा ना होने पर, उन्हें पता था, उन यहूदियों को पता था किसने कहा है इस मकदस को ढा दो तो तीन दिन में मैं इसे उठा खड़ा करूंगा। उसको जब मसलूब कर दिया गया फिर वो पिलातुस के पास गए, कहने लगे हम जानते हैं इसने कहा था जीते जी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, अब हमारी रिक्वेस्ट यह है कि उसकी कब्र पर पैरा लगा दे, उसके ऊपर मोर लगा दे, ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए उसकी लाश को चोरी करके ले जाए और लोगों में मशहूर कर दें कि यीशु जिंदा हो चुका है। पिलातुस ने कहा ठीक है, जो भी तुम इंतजाम कर सकते हो, जो तुम्हारे बस में है वो कर लो, और उन्हें गार्ड मुकर्रर कर दिए, पत्थर के ऊपर मोहर लगा दी, उसकी निगरानी हो रही है कि कोई उसकी लाश चोरी करके ना ले जाए। लेकिन इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले अगर खुदा काम करने पर आ जाए तो कोई उसके हाथ को रोक नहीं सकता है, क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा, और जब वो उतरा तो इतना जाहो जलाल था कि वो जो गार्ड वहां खड़े थे वो बेहोश होकर गिर पड़े, और फरिश्ता ने पत्थर को एक तरफ कर दिया। वो औरतें वहां पर पहुंचे, वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, शायद इंसान हमारे खिलाफ हो, शायद लोग कोशिश करें कि ये काम ना होने पाए, लेकिन अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? खुदा हमारी तरफ है, खुदा जब काम करना चाहे, जब काम करता है, काम करने पर आ जाए तो अबलीस पूरा जोर भी लगा ले तो उसको रोक नहीं सकता है। मिस्र के अंदर फराउन ने पूरा जोर नहीं लगाया कि इसराइली ना निकलने पाए, कोशिश की, आफतों पर आफतें आ रही हैं, उसके मशीर उसे बता रहे हैं पूरा मुल्क उजड़ गया है और फसलें तबाह हो गई हैं, क्योंकि ओले और आग जब नाजल हुई तो कितना नुकसान हुआ, पलौठे मारे जा रहे हैं, अंधेरा छा गया मुल्क के अंदर, पानी खून में बदल गया, लेकिन आसानी के साथ उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जब खुदा ने कहा था कि मेरे लोगों को जाने दे तो अबलीस अब उनको रोक नहीं सकता, और आखिरकार उसे उनको जाने देना पड़ा। कर ले कोशिश, पत्थर के ऊपर मोर भी लगा ले, लेकिन खुदा मौत के बंद खोल कर जिंदा हो गया, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो आज अब क्यों परेशान है कि मेरे लिए इस पत्थर को कौन हटाएगा? खुदा हटाएगा, खुदा कर सकता है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हो सकती हैं, जब खुदा करना चाहे तो हो जाएंगी। और एक दिन आने वाला है, बाइबल के अंदर लिखा है, वो हड्डियां तो उस वादी में ही थी, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है वो दिन आता है जितने कब्रों में हैं सब खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे, और जितने सुनेंगे वो जिंदा हो जाएंगे। यीशु आसमान से आने वाला है मुकर्रब फरिश्ते की आवाज के साथ, बड़ी ललकार के साथ, और जब वो आएगा तो जितने मसीह में हुए हैं वो सब जिंदा हो जाएंगे। कोई उसके हाथ को रोक सकता है? उसमें पावर है, उसमें कुदरत है। क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हो सकती हैं। एक और सिचुएशन पर गौर करें। इब्राहिम 75 साल का था जब वो अपने वतन से रवाना हुआ। खुदा ने वादा किया, उसने कहा मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, तेरी औलाद जमीन के रेत के जर्रों और आसमान के सितारों की मानिंद होगी। लेकिन 25 साल गुजर गए, अभी तक खुदा ने उस वादे को पूरा नहीं किया। इससे पहले अपनी कोशिश से उन्होंने इस्माइल जरूर पैदा कर लिया, लेकिन खुदा ने कहा मेरा वादा, मेरा अहद इसके साथ नहीं, मेरे तो मेरा अहद सारा से जो बेटा मैं तुझे दूंगा उसके साथ होगा। एनीवे, अब इब्राहिम 99 साल का है, सारा 90 बरस की है, और पैदाइश की किताब के अंदर उसके 18वें बाब में मैं इस आयत पर गौर कर रहा था कि खुदावंद फिर आया और अपने उसी वादे को खुदावंद ने दोहराया, जो वादा उसने पैदाइश 11 बाब में इतने साल पहले किया, वही वादा खुदा यहां पर रिपीट कर। खुदा अपने वादों को भूल जाता है? बड़ी भूलता। टाइम जितना मर्जी गुजर जाए, अगर खुदा ने वादा किया है तो खुदा अपने वादे को पूरा करेगा। उसने जो वादा किया खुदा फिर उसी को रिपीट करता है। पैदाइश की किताब 18वां बाब 10 है, तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा, और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। उसके पीछे डेरे का दरवाजा था, सारा वहां से सुन रही थी। इब्राहिम और सारा जईफ और बड़ी उम्र के थे, और सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है। तब सारा ने अपने दिल में हंस कर कहा क्या इस कदर उम्र रसीदा होने पर भी मेरे लिए साधमानी हो सकती है, हालांकि मेरा खावंद भी जईफ है। दोनों ही स्टेज पर नहीं है कि हमारी औलाद पैदा हो सके, क्या इस कदर जईफ होने पर भी मेरे लिए ये पॉसिबल है? फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा सारा क्यों ये कहकर हंसी कि क्या मेरे लिए जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं वाकई बेटा होगा? क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? तुम सोचते हो 100 साल का ना होगा कैसे ये होगा? खुदा कह रहा है क्या मेरे सामने कोई बात मुश्किल है? क्या मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल है? उसने कहा मौसम बहार में मोयन वक्त में पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। कैसे होगा? खुदा करेगा। इंसानी नुक्ता निगाह से, बायोलॉजी के हिसाब से शायद नहीं हो सकता, उनके सिस्टम खत्म हो गया औलाद पैदा करने वाले। बाइबल में क्लियर लिखा है सारा की वो हालत नहीं रही थी जो औरतों की होती है, इसका मतलब है उनके औलाद पैदा करने के जो सिस्टम है वो खत्म हो गए थे। क्या हमारा खुदा सिस्टम बहाल करने की कुदरत रखता है? मेरे लिए कौन इस पत्थर को हटाएगा? खुदा कर सकता है। क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती है? हो सकती है, खुदा कर सकता है। क्या मेरे लिए इस कदर उम्र सीधा होने पर भी उम्मीद हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि खुदा कहता है क्या मेरे नजदीक कोई बात मुश्किल है? खुदा कर सकता है। और खुदा ने उसकी जिंदगी को बहाल किया और खुदा ने उसको औलाद दी। और बाइबल मुकद्दस में एक दिन फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आया और उसने उससे कहा कि तुझ पर खुदा की तरफ से फजल हुआ है और तेरे बेटा होगा, रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर नाजिल होगी और तूने उसका नाम यीशु रखना है। उसने ये क्यों कर होगा? हाउ? उसने कहा क्योंकि मैं मर्द को नहीं जानती। ऐसे ही लिखा बाइबल के अंदर। खुदा ने कहा ये होगा, अगर खुदा कह रहा है तो फिर हो जाएगा। अब यशायाह की किताब में ऑलरेडी पेशन गोई मौजूद थी कि देखो एक कुमारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। पेशन गोई थी, लेकिन कुमारी से बेटा कैसे पैदा होगा ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो मुकद्दस मरियम को भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन कैसे होगा? हाउ? और जवाब मिला, रूहुल कुदस की कुदरत तुझ पर नाजिल होगी। इसका मतलब है जो इंसान से नामुमकिन काम है खुदा वो काम कर सकता है। खुदा जो कायनात का पैदा करने वाला है, क्या उसके लिए ये मुश्किल था कि वो मुकद्दस मरियम के बतन में उस बाडी को तैयार करे और फिर खुद उसमें आकर जुगूलत करे? नहीं हुआ है। तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया, बाइबल में लिखा है, रूह कुदस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वैसे नामुमकिन सी बात है, लगता ये कैसे हो सकता है, लेकिन खुदा कर सकता है। खुदा सब कुछ कर सकता है, जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। मैं सोचता हूं मौत कई दफा ये समझा जाता है कि एंड है, क्योंकि लाजर जब बीमार हो गया उन्होंने यीशु के पास मैसेज भेजा, पैगाम भेजा कि तेरा दोस्त लाजर जिसे तू अजीज रखता है बीमार है, लेकिन खुदावन यीशु नहीं आया, वो भी बराबर ठहरा रहा दो दिन और फिर लाजर मर गया। यीशु को पता चल गया, किसी ने उसको आकर बताया नहीं, उसे वैसे ही पता, खुदा सबको जानता है, मुझे पता। उसने कहा मेरा दोस्त लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूं। मुकद्दसों के लिए मौत ऐसे है जैसे आदमी सो गया है और फिर उसने जिंदा हो जाना है। यीशु गया, उसकी बहनें शिकवा करने लगी, मरियम भी और मार्था भी, दोनों ने एक ही बात की, आई उसको मिलने और कहा ए खुदावन अगर तू यहां होता तो हम मेरा भाई न मरता। इसका मतलब है खुदावंद अगर तू चार दिन पहले आ जाता तो फिर उम्मीद थी, फिर होप थी, क्योंकि हमने तुझे और कई बीमारों को अच्छा करते हुए देखा है, तू कर सकता था। अगर तू यहां चार दिन पहले आ जाता, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा। इसका मतलब है मेरे लिए अब पानी सार से नहीं गुजरा, मैं अब भी कर सकता हूं, तेरा भाई जी उठेगा। उसने समझा शायद कह रहा क्यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। फिर यीशु ने ये बात कही, उसने कहा क्यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, जो जिंदा है और जो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। फिर यीशु वहां पर गया। तो कई दफा हम सोचते हैं जब तक जिंदगी है होप है, जब मर गया तो फिर तो काम खत्म, अब क्या हो सकता है। यीशु ने कहा मुझे वो जगह दिखाओ जहां पर उसको रखा है, और फिर उसने कहा पत्थर को हटाओ, और बहने कहने लगी खुदावंद अब तो उसमें से बदबू आती होगी। क्यों? क्योंकि तीन दिन के बाद बॉडी जो है वो गलना सड़ना शुरू हो जाती है, यही वजह स्मेल आती है डेड बॉडी में से। अब क्या हो सकता है? नथिंग। लेकिन मेरा खुदावन ये साबित करना चाहता है कि जहां हम समझे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हमारे इख्तियार से बात बाहर निकल गई, बहुत दूर बात चले गई, खुदावन ऐसी सिचुएशन में भी काम करने की कुदरत रखता है। उसका पत्थर को हटाओ, और यीशु ने आवाज दी और लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया, लाजर जिंदा हो गया। कई दफा लोग कहते हैं अगर यीशु उस दिन लाजर का नाम लेकर नाना कहता कि लाजर कब्र में से बाहर आ जा, तो शायद पूरी दुनिया के मुर्दे ही जिंदा हो जाते। क्योंकि उसके कहने पर सारे मुर्दे जिंदा होने हैं। अगर उसी दिन वो नाम ना लेता एक बंदे का स्पेशल, वैसे ही हुक्म दे देता कि जिंदा हो जाओ, कब्र से बाहर आ जाओ, तो सारे दुनिया के मुर्दे भी बाहर आ सकते थे। देखा एनीवे, वो आखिरी दिन उसने ये करना है कहा। खुदा के अंदर पावर है, खुदा के अंदर कुदरत है। कहना मैं आपको ये चाहता हूं, शायद मरने पर हम समझते हैं कि अब काम खत्म हो गया है, लेकिन खुदा हमें जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो आएगा और जितने मसीह में हुए हैं वो सब फिर से जिंदा हो जाएंगे। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर मुझे और आपको भी उम्मीद मुहैया कर दी है। अगर यीशु जी उठा है तो हम भी जी उठेंगे। ये होप है हमारे लिए, यही हमारी होप है, यही हमारी उम्मीद है। इसलिए मौत अब हमारे लिए परेशानी का बायस नहीं है। हम औरों की तरह गम ना करें जो ना उम्मीद है, क्योंकि अगर यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो उसके साथ सो गए हैं उसी तरह फिर वापस ले आएगा। क्योंकि उसके आने पर सबसे पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। साइंसदान जो मर्जी सोचते रहे, अकल के घोड़े दौड़ाते रहे कि कैसे होगा, कैसे एक बंदा जो हजार साल पहले मर चुका है कैसे वो फिर जिंदा हो सकता है, कैसे ये होगा। ऐसे ही नहीं जैसे औरतें क्वेश्चन कर रही थी, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा, कैसे ये होगा, मुश्किल सा काम है। कैसे 100 बरस के आदमी से एक बेटा पैदा होगा, कैसे होगा, कैसे ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं। जवाब यही है, हमारा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो कर सकता है। मुझे नहीं पता कौन सी चीज आपके सामने उस बड़े पत्थर की तरह पड़ी हुई आपको नजर आ रही है, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा। लेकिन आज हमारे लिए उम्मीद यही है कि हमारा खुदा हमारे मांगने से पहले हमारी जरूरतों को जानता है। ये औरतें सोचती जा रही थी, आपस में कहती जा रही है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले खुदा ने वो पत्थर हटाया हुआ था। क्या पता आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, खुदा जो आप नहीं कर सकते वो करने की कुदरत रखता है। उसे कहें, खुदावंद मेरे लिए तो ये बड़ा मुश्किल है, मैं तो ये समझता हूं मेरे लिए ये पत्थर कैसे हटेगा, लेकिन तू कर सकता है। खुदावंद मैं सारी मुश्किल को, नामुमकिन सिचुएशन को तेरे हाथों में देना चाहता हूं। और खुदावंद तू दुआओं का जवाब देने वाला है, तू नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। जो इंसान से नहीं हो सकता वो तू कर सकता है, बल्कि तू सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैं इन सारी रुकावटों को, सारी असुमाइशों को, इन सारे पत्थरों को खुदावंद तेरे हाथों में देना चाहता हूं। और तेरे फरमाने से तो समुन्द्र दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तेरे फरमाने से तो यर्दन दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तेरे फरमाने से तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, तेरे फरमाने से मौजज़े रूनमा होते हैं। और मौजज़ा नाम ही इसी चीज का है, जो इंसान से ना हो सके खुदा जब वो करता है तो इसी को मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े की डेफिनेशन क्या है, जो इंसान से नहीं हो सकता जब खुदा अपना हाथ बढ़ाकर वो काम कर दे तो हम कहते हैं ये मौजज़ा हो गया। कैसे ये मुमकिन है कि 5 रोटियां हो और 2 मछलियां हो और 5,000 आदमी ही आदमी हो, औरतें और बच्चे इसके अलावा हो, कि वो खाएं और फिर भी खाना खत्म ना हो। कोई बंदा ये कर सकता है? अगर कर सकते हैं तो हर शादी पर हम यही चक्कर चलाएं, लेकिन हम नहीं कर सकते, खुदा कर सकता है। क्या ये मुमकिन है कि कोई आदमी पानी पर चलना शुरू कर दे? मुश्किल है, मुश्किल है, नामुमकिन बात, लेकिन यीशु कर सकता है। क्या ये मुमकिन है कि 4 दिन का मरा हुआ बंदा मुर्दों में से जिंदा हो जाए? यीशु कर सकता है। तो अगर आपके दिल में भी यही बात है, मेरे लिए ये कैसे होगा, ये तो मुश्किल सी बात है, मेरे ये पत्थर कौन हटाएगा, जवाब है खुदा हटाएगा, खुदा कर सकता है। क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा कर सकता है। सो ये दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी आपकी जरूरत है, जिस सिचुएशन का भी सामना है, अगर आप ये फील करते हैं कि ये तो नामुमकिन सी बात है जिसमें मैं फंस गया हूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज अपनी ये मुश्किल खुदा के सामने ले आए, उससे कहें खुदावंद मैं उन औरतों की तरह जो तुझसे मोहब्बत रखती थी, सोचती थी कि ये पत्थर कैसे हटेगा, मैं भी अपने ये पत्थर आज तेरे हजूर में लाता हूं। तू कर सकता है, तू खुदावंद कर सकता है। आइए अपनी बीमारियों को आज खुदा के सामने रखें, आइए आज अपने अपने प्रॉब्लम्स को खुदा के हजूर में ले आए कि खुदा तू कर सकता है, खुदा तू मुझे जवाब दे सकता है, खुदावंद तू मेरे घर के इस मसले को हल कर सकता है, खुदावंद तू मेरी इस बीमारी को शफा दे सकता है, तू नामुमकिन बात को भी मुमकिन कर सकता है, क्योंकि मेरा ईमान है कि तू मौजज़ा करने वाला यीशु है, तू मौजज़ा करने वाला खुदा है। तो आज मैं तेरा मौजज़ा मांगता हूँ, जैसे उस दिन तूने अपने फरिश्ता को भेजा और पत्थर को हटा दिया, आज भी अपनी कुदरत को नाज़िल कर और मौजज़ा कर। हालेलुया 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 हालेलुया।